आगे देखते हैं, इसमें फिर अल्लाह ताला ने एक ऊंटनी का जिक्र किया। ये एक ऊंटनी थी। हजरत सुआले अलैहि सलाम की कौम ने एक बड़ा अजीब मुजजा मांगा, कहने लगे कि हम आपको नबी सिर्फ इस सूरत में मांगेंगे, वो सामने एक ऊंट चट्टान है, कातिबा नाम की एक चट्टान थी छोटी सी, कहते थे हमारे सामने ये फटे, फिर इसके अंदर से एक ऊंटनी निकले, फिर हमारी आंखों के सामने वो बच्चा पैदा करे और वो बच्चा बड़ा हो, तो फिर हम आपको नबी मानेंगे। आपको लग रहा है ना, ये आपके बच्चे का मुतालबा है जिसको सुबह नाश्ता नहीं करना और आप उसको नाश्ता कराना चाहते हैं, तो वो आपके साथ मुख्तलिफ शर्तें रख रहे हैं। सुना है कभी ऐसे बच्चों के मुतालबे, वो प्लेट निकालें, वो चम्मच निकालें, फिर वहां से लाएं, फिर मुझे वहां से ला के दें, फिर खाऊंगा। असल में ये बात ही ना मानने की, और उनको ये था कि हमारे इस मुतालबे से होना क्या है, कोई आना तो है नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने हूबहू वही कर दिया। हजरत साले ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला आपके लिए क्या मुश्किल है, माँ के पेट से उठनी निकल सकती है तो पहाड़ से क्यों नहीं निकल सकती, वो तो उससे भी छोटी जगह थी। तो लिहाजा वही हुआ, सबकी आंखों के सामने वो चट्टान फटी, उसमें से एक ऊंटनी निकली। कहते हैं कि वो हामिला थी, इतनी बोझल थी कि अपने वजन से गिरती पड़ रही थी, और फिर सबके सामने उसने एक बच्चे को जना, फिर वो बच्चा उसके सामने सबके देखते देखते आंखों से बड़ा हो गया। ये मंजर देख लिया सबने जो मांगते थे, वक्ती तौर पे मान गए, डर गए। अब हुआ क्या कि वो ऊंटनी थी, जाहिर उसको खाना था, उसको पीना था। अब वो ऊंटनी इतनी ऊंची चौड़ी लंबी थी कि जिस जगह जाती इनके जानवर डर के भाग जाते। पानी पीने जाती तो सारे कुएं का पानी पी जाती, खेत जाती तो सारी खेती को चरती। अब फिर इनको तकलीफ शुरू हो गई कि ये क्या मुसीबत है। फिर हजरत सुआले अलैहि सलाम ने उनको कहा कि ठीक है, एक दिन ये अल्लाह की ऊंटनी जो है, नाकतुल्लाह उसको कहते थे, ये पानी पिएगी, तो दूसरे दिन बारियां मुकर्रर कर दी। कुछ दिन चलता रहा, लेकिन उन्होंने दिल में बुग़्ज़ पाल लिया कि इसकी वजह से हमारी ये मईशत खराब हो रही है। लिहाजा एक दिन बैठ के प्रोग्राम बनाया और उस ऊंटनी की कूछे काटी, उसके पाँव काटे, और वो फिर कहते हैं कि उसने एक चीख मारी और वो उसी चट्टान में जहां से आई थी वहीं चली गई, और उसके पीछे उसका बच्चा भी चिल्लाता हुआ वापस चला गया, जिसको उसके बाद किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये चीज उनके लिए खुद पकड़ का सबब बन गई। उन्होंने हजरत सालेह के कत्ल की भी कोशिश शुरू की कि अब ये हमें अजाब से डराता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना जबरदस्त किस्म का अजाब उन पे दिया। तीन किस्म के अजाब इस कौम पे आए थे जो आगे आप जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहां जो जिक्र है वो है चिंगाड़ का। हमारे लिए इस पूरे रुकू में अमल की बातें यही हैं। पहली बात है कि तौबा इस्तग़फ़ार को जिंदगी का हिस्सा बनाना है। कौन सी तौबा? इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 ना पता ना सिरा, कुछ भी नहीं, नहीं, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अब देखिए कि जब हम अपने शऊर के साथ इस्तग़फ़ार करते हैं ना, तो फिर हमारी आंखों में आंसू ज़रूर आते हैं, दिल में रिक्कत ज़रूर आती है कि अल्लाह मैंने ज़िंदगी कहाँ गुजार दी, मैं तो वक्त ज़ाया करके आ गई, नदामत, शर्मिंदगी। और ये महीना बेहतरीन महीना है अपने गुनाहों पे आंसू बहाने का, क्योंकि एक आंसू बहेगा तो वो 70 आंसुओं के बराबर हो सकता है। जितनी भी कोशिश कर सकें अपने गुनाहों को साफ करने की कर लें। बहुत सारी चीज़ें चमकती हैं, बहुत सारी चीज़ों को साफ करते हैं, इस जिस्म को, इस जिस्म बदन को गुनाहों के बोझ से आज़ाद करना। आप किसी को अगर अपने कंधों पे एक भारी बोझ उठा के चलते फिरते देखें तो क्या महसूस करेंगे? आप उसे कहेंगे भाई इसको उतार के फेंक दो। बस आप देखिए कि गुनाह क्या होते हैं, जैसे ट्रैश है, गंदगी है। अब गंदगी के लिए क्या करते हैं इंसान, जल्दी से जल्दी उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं ना। अगर कोई उसको उठा उठा के फिरता रहे, अच्छा यहाँ से भी उठा लूँ, यहाँ से भी उठा लूँ, और उठा लूँ, तो आप कहेंगे कि पहले जो है इसको तो फेंको, फिर और उठाना। हाँ, इसी तरह जो लोग गुनाहों का बोझ ले लेके फिरते हैं, वो एक बहुत बड़े गिल्ट के साथ जीते हैं जिंदगी के अंदर। अल्लाह ताला से इतना कुर्ब जरूर होना चाहिए बंदे का कि अपने गुनाहों को उसके सामने जिक्र करके फिर उससे माफ़ी तलब कर सके। और एक मिनट लगता है, एक लम्हा लगता है उसको बख्शने के लिए। हम लोग समझते हैं कि शायद ये बड़ा मुश्किल काम है, नहीं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी दुआएं गुनाहों की वजह से कबूल नहीं होती। कुछ गुनाह जो होते हैं वो बैरियर बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं आपकी दुआओं की कबूलियत में। ये ऐसे ही है कि जैसे मसलन आप देखिए कि मेरी आवाज़ आ रही है ना, आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन कोई हो सकता है उसने अपने कानों पर एक पर्दा हो, कोई ऊपर कोई, यानी उसने कानों में रुई डाली हो, या कोई बहुत दूर बैठा हो किसी पर्दे के पीछे हो कि उसको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो उसका इलाज क्या होता है कि उस पर्दे को चाक किया जाए, और उस चीज को महसूस किया जाए तो फिर वो आवाज आने लगती है। इसी तरह बंदा मोमिन पुकारता भी रहे लेकिन कोई गुना ऐसा होता है कि जो रब तक उस पुकार को पहुंचने नहीं देता, तो उसका बेहतरीन इलाज क्या है कि अल्लाह ताला से नदामत के साथ आंसू बहा लिए जाए। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बारिश नहीं हुई तो दुआएं मांगी ना हुई तो कहने लगे कि सब जाके खुले मैदान में बैठ जाते हैं, वहां दुआ करेंगे, जैसे आज भी होता है सलातुल इस्तिस्का, तो अल्लाह ताला बारिश देगा। सारी कौम गई, खैर मिल के इज्तमाई दुआ हुई तो बारिश फिर भी ना हुई। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को वही के जरिए बता दिया कि आपकी महफिल में एक ऐसा शख्स बैठा है कि जिसके गुनाह की वजह से सबकी दुआ कबूल नहीं हो रही। नाम नहीं बताया उसका, क्योंकि अल्लाह ताला पर्दे रखते हैं, किसी का राज अफशा नहीं करते, लिहाजा उसकी मौजूदगी में दुआ कबूल नहीं हो सकती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम वहां बैठे लोगों को भी दे दिया कि ये वजह है। अब बाकियों को तो नहीं पता, लेकिन जो गुनाह करके आता है ना उसको पता होता है। उसको समझ में आ गई कि मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं कि मेरी वजह से इतनों की दुआएं नहीं कबूल हो रही। फौरन उसने अपने ऊपर मलामत की और वहां बैठे बैठे तौबा की कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से दूसरों की दुआएं कबूल नहीं हो रही। उसके अंदर दिल के साथ रब के साथ रबते हैं और आसमान से बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह ताला अभी तो आपने कहा था कि बारिश नहीं होगी और अब बारिश शुरू हो गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा आपको नहीं पता कि उस बंदे ने यहां बैठे बैठे तौबा कर ली, जब तौबा हो गई उजर दूर हो गया तो बारिश हो गई। इतना करीब है, हम उसको खुश करते नहीं, वरना वो तो खुश होने को तैयार है। कम अज कम इस पे अमल की बात लिखिए, अपने गुनाहों और गलतियों का एहसास करके दिन में कम अज कम 100 मरतबा तौबा करनी है। नबी सल्लम ने फरमाया कि मैं दिन में 100 बार तौबा करता हूं, जिनके गुनाह भी नहीं थे। हमें कितने करने चाहिए? एक और चीज इस रुकू से जो हमने सीखी वो क्या है कि अगर कोई दीन के लिए दलाइल मांगे, जैसे इन्होंने मौजजा मांगा बड़ा अनयूजुअल सा, तो लोगों को मशहूर करने के लिए मुमकिन हद तक दीन की ताकत दिखा देनी चाहिए। मसलन बाज देखिए कि बाज लोग दीन के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को पसंद नहीं करते कि ये क्या बात है कि अब हम ये भी चीज दीन के लिए करें। जैसे आपको मालूम है कि पहली दफा माइक जब इस्तेमाल हुआ, या आज की भी दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो माइक पे तबलीग करने को नापसंद करते हैं कुछ और ऐसी बातों को, तो लिहाजा ऐसे वक्त में करना क्या है कि लोगों को मरूब करने के लिए या उन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए दिखा देने चाहिए मुझसे कि तुम दीन वालों को कमजोर मत समझो, क्योंकि जो दीन से दूर होते हैं ना वो एक लाशौरी तौर पे एक बड़ाई का एहसास रखते हैं दिल में, और दीन वाले को देखते ही लाशौरी तौर पे उसके छोटा होने का तसव्वुर आता है, इल्ला माशाल्लाह जब अल्लाह ताला किसी को इस दर्जे पे पहुंचा दे। लेकिन अमूमन जो दीन के इब्तदाई मरहले होते हैं ना उसको देख के लोग बिगड़ते हैं। मसलन एक देखिए एक लेवल पहुंचता है ना, मसलन कोई शेख है, जैसे आज आप देखें आपके शहर में जो उलमा कराम है या जो मस्जिदों में यानी इमाम है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इज्जत है, लोग उनको देख के खुश होते हैं, उनका नाम आता है, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ये एक खास वक्त तक होता है। लेकिन इससे पीछे के जो दीन के मरहले होते हैं ना, लोग उसको पसंद उन लोगों के लिए उनके दिल में कोई इतनी बड़ी जगह नहीं होती, और उसकी बहुत सारी वजूहात में एक ये भी होती है कि वो लोग बुराइयों से रोकते हैं। तो लिहाजा जैसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में ऊंटनी दिखाई गई, एक अनयूजुअल चीज थी, तो अगर दीन की महफिल में भी अगर कहीं कोई मिसाल है कोई प्रेजेंटेशन दिखा दी जाए, कोई प्रोजेक्टर का इस्तेमाल, कोई कंप्यूटर का, तो ये चीजें भी इंशाल्लाह कुछ ऐसे लोगों को दीन की तरफ ले आएंगी जो वाकई जहनी तौर पर अपने आप को जरा आला दर्जे का समझते हैं। चलिए रुकू नंबर 7 को देखते हैं। وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِإِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثْتَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبریاں لے کر آئے اور سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ अब जो देखा कि इनके तो हाथ इसकी तरफ नहीं पहुंच रहे तो इनसे अजनबियत महसूस करके दिल ही दिल में इनसे खौफ करने लगे। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो कौमे लूत की तरफ भेजे हुए हैं। इनकी बीवी जो खड़ी हुई थी हंस पड़ी, तो हमने उसे इसहाक اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی. قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وحاذا بالی شیخا, وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی, میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے, میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں, اور یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے, تم پر اے گھر وال کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں, بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے. جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے. یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت تحمل والے, نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے. یا ابراہیم عارض عن ھذا, اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے, آپ کے رب کا حکم آ پہنچا, ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے. جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے, اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی. وہ تو پہلے سے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی. لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگوں, یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں, ان سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو, کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں, اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے. لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی, یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا. قالو یا لوط انا رسل ربک, اب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں, ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں, پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو, تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے, اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا. یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے, کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا, پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا, یعنی الٹ پلٹ کر دیا, اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر پرسائے جو تہ بتہ تھے, تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے. رکوع نمبر 7 تھا, اس کا عنوان کیا ہے؟ قوم لوط پر پتھروں کی بارش. اس رکوع میں ہم نے دیکھا کہ ابتدا میں فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, انہوں نے خوشخبری دی, کس کی؟ بیٹے کی خوش پیدائش کی. سلام کیا, ابراہیم علیہ السلام نے بغیر پوچھے ان کے کیا کھاؤ گے, کتنا کھاؤ گے, بھوک تو نہیں لگی, چلو کھا کے تو آئیں گے ہوں گے, ایسا نہیں کیا بلکہ ان سے فوراً بچھڑا ان کے سامنے رکھا بھنا ہوا, اور اس کے بعد پھر اس فرشتوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا, اور پھر فرشتوں نے بی بی سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی. خوشخبری سن کے وہ حیران ہو گئیں کہ اس عمر میں میں کیسے بچہ پیدا کروں گی, تو اس پہ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلائی, اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ تعریفیں ہیں. اگر اتنے حصے کو ہم اپنے عمل کی روشنی میں دیکھیں تو پہلی بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتے انبیاء کرام کے پاس آتے تھے, اور آج نیک لوگ بھی, اللہ تعالیٰ کے دوست جو ہیں, اللہ کے ولی, ان کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں. قرآن پاک میں آگے جا کے پڑھیں گے سورۃ حمیم سجدہ میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ایسا کردار اپنا بنائے, ایسا سچا ہو جائے, استقامت پہ آ جائے کہ فرشتوں کے ساتھ کم از کم ان کی موجودگی کے احساس کو محسوس کر سکے. دوسری چیز ہمارے عمل کی اس میں کیا ہے کہ جب کسی کے پاس جائیں تو اس کو سلام کریں, और इसमें वो बात भी आपको मिल गई कि पहले फरिश्तों ने सलाम किया है, आने वाले को सलाम करना चाहिए। बाज लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, किसी को आता देखते हैं झट से सलाम करना शुरू होते हैं। मतलब उस्ताद क्लास में आया है तो शागिर्द उसको सलाम करने लगते हैं, नहीं ये उनका काम नहीं। आप किसी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठा हुआ पहले आपको सलाम करे, हुक्म क्या है? आने वाला बैठे हुओं को सलाम करेगा। बच्चों को भी इसका अदब डालिए, अदब सिखाइए। मिसाल है बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको सिखाइए कि वो आपको सलाम करें, आप उनको जल्दी ना करें। दूसरी चीज हमने इसमें क्या सीखी कि जवाब में फिर उन्होंने भी सलाम कहा, यानी सलाम को आम करना है, इस कल्चर को आम करना है। तीसरी चीज जो अगली हमने सीखी हजरत इब्राहिम के किरदार से, वो क्या है? मेहमान नवाजी। मेहमान के आने पे उसको पूछना नहीं चाहिए या उससे कम अज कम इतना ज्यादा पूछवा लें कि वो ना ही कर दें, ये अच्छा अदब नहीं। ये सुन्नत है और इस पे बहुत बातें लिखी गई तफसीर में कि मेहमान जो आता है ना, आते ही उसको ठीक है। अब आज के दौर में लोग चूंकि बहुत टेस्ट कॉन्शियस हो गए और दूसरे की पसंद का ना खाते हैं ना पीते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। किसी का नहीं भी दिल चाहता था, आप उसको वो चीज़ देते थे, वो पी लेते थे। आपका चाय का मूड होता था, आपको किसी ने बोतल रख दिया, पी लेते थे। लेकिन आज मुश्किल क्या है कि बचपन से ही हमने बिगाड़ लिया अपनी आदतों को, पूछ पूछ के क्या पियोगे और कितना पियोगे। लेकिन बहरहाल अच्छा अदब नहीं, पूछने की हद तक अलग बात है, लेकिन मेहमान को आते ही बेहतरीन चीज मेरा ख्याल जो मुझे लगता है जो बाहर से आता है उसको कुछ और चीजों के साथ पानी जरूर कम से कम पेश करना चाहिए। और ये मेहमान अपने घर में आने वाला शोहर भी हो सकता है जो बेचारा सारे दिन के बाद आता है, या बच्चे स्कूल से आए उनको भी आप पूछा करें कि बेटा पानी पियोगे, आपको पानी दूं। यानी एक अच्छा अदब सिखाया गया। बाज लोग बहुत ही इस मामले में बखील दिखे गए कि उन मेहमान को खिलाते तो हैं लेकिन दिल की खुशी से नहीं खिलाते। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई जुमला उनकी जुबान से जरूर ऐसा निकल जाता है कि जिससे आने वाला महसूस करता है कि ये मुझे खिलाना नहीं चाहता या खिला के एहसान जतलाता है। मेहमान नवाजी दीन का हिस्सा है और नबी सल्लम ने यानी फरमाया कि युक्रिम, अपने मेहमान की इज्जत किया करो। शुरू के तीन दिन जो होते हैं उसके अंदर यह है कि आप उसकी अपनी हैसियत से भड़ के जो आप करना चाहें करें, उसके बाद फिर आप उसको शामिल कर सकते हैं। फिर तीसरी बात क्या पता चली कि मेहमान के आगे रख के सिर्फ बैठ नहीं जाना चाहिए बल्कि उनको खाने की दावत भी देनी चाहिए। बस लोग खाना रख देते हैं और फिर कहते हैं, बल्कि बस खुद खाते रहते हैं और मेहमान को नहीं कहते। तो लिहाजा मेहमान को भी कोई ज्यादा खुद तकल्लुफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ये एक अदब है ना, हमारे दीन का एक हिस्सा है, ये भी हमारा दीन सिखाता है। तो मैं इसलिए इस पे आपके साथ बात कर रही हूँ। बाज दफा आने वाले भी झूठा तकल्लुफ करते हैं, भूख नहीं होती, हमें खा के आए हैं, घर में सारा रास्ता बाहर सोचते आए थे कि देखते हैं आगे जाके क्या खाने को मिलता है, और जब वहां आए तो उन्होंने कहा क्या, नहीं हम खा के आए हैं। हाँ अच्छा, मेहमान जो घर वाला होता है वो भी एक बड़ी बेअदबी का इजहार करता है जब मेहमान उसको कहता है आप भी साथ खाइए, तो कहते हैं नहीं हम तो खाते ही रहते हैं। यानी गोया कि आपको कभी नहीं मिला, आपने तो आज ही खाना है और हम तो खाते पीते लोग हैं। ये ऐसी मतलब जिसको कि बद तहजीबी की बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन्नत क्या है कि मेहमान के साथ आप भी खाइए, खुद नहीं खाते। आपको मालूम है आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक वाक्य आएगा, तो एक सहाबी ने खाना कम था तो सिर्फ इस नियत से चिराग बुझा दिए कि मैं मेहमान के साथ सिर्फ हाथ चलाता रहूंगा और वो ये समझेगा मैं खा लूं। वरना आप देखिए जरा तसव्वुर में लाएं, आप कहीं गए हैं, अब आपके आगे खाना रख दिया, अब घर वाला खुद नहीं खा रहा और आपको टुक टुक देख रहा है, वो तो आपके नवाले गिनेगा ना। तो ये नहीं होना चाहिए इसमें। फिर उसमें यह है कि दिल की खुशी के साथ खिलाना चाहिए, जो घर की बेहतरीन चीज है आपके पास वो पेश कीजिए। बाज लोग मेहमान को देख के अच्छी चीज छुपा देते हैं, बेटा ये कल निकालेंगे, वो दाल की पतीली निकाल लो, वो चल जाएगी, पूरी हो जाएगी। और खास तौर पे जब मेहमान अपनी मर्जी के ना हो, नहीं। मैंने देखा है कि जितना मेहमान को खिला के इंसान को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, उतना अपना पेट भर के नहीं मिलती। यानी मुझे किसी की बात याद आती, वो कहते थे कि एक रोटी हो ना वो पूरी खा भी लो तो उतना पेट नहीं भरता, जितनी उसमें से आधी तोड़ के उस किसी और को दे दो और आधी खुद खा लो तो पेट भरता है। लिहाजा इंसान के अंदर ये चीज़ों की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए और फिर उसमें इंशाल्लाह ताला ये कि अल्लाह ताला बरकत भी दे देता है इस चीज़ के अंदर। तो लिहाजा इसके ऊपर थोड़ा सा हमें अपने लिए अपने दिल को खुला करने की और बड़ा करने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला उसको करे। एक दफ़ा एक सहाबिया ने नबी सल्लम से पूछा कि हम किसी के घर में जाती हैं, हमें भूख लगी होती है, लेकिन जब घर वाला पूछता है कुछ खाओगे तो हम कहते हैं भूख नहीं, तो क्या ये भी झूठ है? तो आपने फरमाया कि भूख और झूठ को साथ ना करो, यानी भूख को झूठ से ना मिलाओ, लगी हुई भूख तो खा लो, बेजा तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और एक ज्यादती भी करते हैं फिर लोग, बाज लोग फिर इतना तंग करते हैं, खाइए ना, पकड़े प्लेट में डाल देंगे प्लेट आपके, फिर उसके बाद पहले ठंडा फिर गर्म फिर चाय फिर वो, मतलब मजबूर कर देना कि मेहमान को गुस्सा आने लगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये थोड़ी सी इसमें तवाजुन की जरूरत है। दूसरी चीज हमने जो इसमें सीखी वो क्या है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। बीबी सारा को जिस वक्त खुशखबरी मिली बेटे की, वो शायद 90 साल की थी और हजरत इब्राहिम 100 साल के करीब थे। बेटे की खुशखबरी सुनी तो कहने लगी मैं कैसे करूंगी, एक तो बांझ, कब सारी जिंदगी औलाद नहीं हुई, अब दूसरी मतलब बुढ़िया हो गई, मीनोपॉज की उम्र आ गई है, और शौहर भी बूढ़ा कमजोर ताकत नहीं, कहां से बच्चा होगा? तो फरमाया कि आता जबीन बिन अमरिल्ला, क्या अल्लाह के हुक्म से अजब ताजब करती हो। मैं जब ये वाक्या पढ़ती हूँ, एक इनका हजरत सारा का, बीबी हाजरा का, और तीसरा वाक्या जब मैं ये पढ़ती हूँ हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का, ये तीन इतनी बड़ी बड़ी मिसालें हैं हमारे सामने कि हजरत खदीजा की जब नबी सल्लम से शादी हुई थी तो वो 40 साल की थी, लेकिन आपको मालूम है कि नबी सल्लम की सारी औलाद जो है वो हजरत खदीजा से हुई, सिवाय एक बेटे के जो मारिया खिप्तिया के बतन से हुआ। आज कितने धड़ल्ले से हम कहते हैं कि 40 साल के बाद औलाद नहीं हो सकती, मीनोपॉज आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है जो असबाब होंगे वो होंगे, लेकिन अल्लाह चाहे तो कभी भी कर सकता है। मेरे पास एक तस्वीर है, आपको कभी मौका हुआ तो दिखाऊंगी, तो गालिबन 100 कुछ साल की बूढ़ी औरत है, इतनी बूढ़ी है कि उसके चेहरे पे झुरियां पड़ी हैं, कमजोर है, और वो बेड पे है और उसके उसने बेबी को पैदा किया, ये यही इसी मुल्कों की बातें हैं, तो उसने बेबी पैदा किया। तो मुमकिन है, ठीक है आम हालात में नहीं, लेकिन अल्लाह ताला खास लोगों को बड़ी उम्र में भी दे सकता है जिनसे अल्लाह ताला ने कोई काम करवाना होता है। फिर इसमें आप देखिए कि एक और चीज जो हमने हजरत इब्राहिम के नाते से सीखी, हलीम और मुनीब, अपने अंदर हिल्म पैदा करना है। हिल्म क्या होता है? तहम्मुल। हलीम पता क्या होती है? नाम ले लो, इस वक्त भूख तो नहीं लगेगी, क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि रोजे की हालत में आप खाने पीने की बातें ना किया करें, बहुत रोजा लगता है उसके बाद। ये हलीम इसीलिए हलीम होती है कि वो सब कुछ खुल मिल जाता है। हलीम कौन सा शख्स होता है? वो लोगों की सारी ज्यादतियों, उनके सारे रवैयों को खोट देता है, पी जाता है अंदर, बस जुबान पे नरम। हलीम कितनी नरम होती है, वो हलीम ही क्या जिसमें से कोई चीज जुबान पे चुभे, इसमें तो दाल का दाना है, इसमें तो गंदम का दाना है। हलीम शख्स वही होता है कि जो लोगों को दरगुजर करे, माफ करना सीखे। आपकी शख्सियत में इतनी हलीमी आनी चाहिए कि लोग आपको इतना नरम महसूस करें कि उनको मजा आ जाए आपसे मामला करके। एक दफा नबी सल्लम बैठे थे, एक काफिला आया। अब लोगों की आदत होती है ना कि अब नबी सल्लम मस्जिद नबी भाग भाग के गए और जाके जल्दी जल्दी वहां आके पहुंच गए, सारा काफिला दौड़ने की कैफियत में वहां पहुंच गया। एक शख्स थे, अश्जे उनका नाम था, वो पीछे बड़े तहम्मुल से वकार से चलते हुए आखिर में वहां पहुंचे। तो नबी सल्लम ने उनको देख के फरमाया, इन नफी का लखसलतैन, ए अश्जो तेरे अंदर दो खसलतें हैं जो अल्लाह को बड़ी पसंद हैं, और वो क्या है? अल हिल्म वल इनाब, तहम्मुल और आजजी। यानी तू बहुत ज्यादा तहम्मुल से आया, बाद लोग भागने पड़ते हैं, मतलब बाज किसी मेहमान को देखता ना एकदम उसके सर पे जाके उसके गले पे लगते हैं कि वो गिरते गिरते बचता है। बाद लोग किसी को देख के हाथ मिलाते हैं, इतनी जोर से उसका हाथ झड़कते हैं कंधा हिलने लगता है। तहम्मुल, एक वकार, एक आजजी, इंसान को ये सारी चीजें उसकी शख्सियत को बनती हैं। मुल सीखे, आप देखें हर इंसान एक ही जैसी चीजों से मिलके बना है, गोश्त हड्डी सब कुछ वही है, लेकिन कुछ लोग इतने नरम दिल, इतने नरम होते हैं, आप उनके पास मिलते हैं आपका दिल चाहता है हम और बैठें और बात करें, उनसे और अच्छा मामला करें। और कुछ लोगों के साथ खाना खाना आपको दुश्वार हो जाता है, उनकी आवाजें उनकी कुछ, तो थोड़ी सी इंसान को अपनी शख्सियत के अंदर भी यानी एक शुस्ता होने की जरूरत है। फिर इसके बाद आखिरी जो बात इस रुकू की थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के नाते बहुत ही ज्यादा यानी डराने वाली बात है। कौम लूत के बारे में जैसा कि आप पीछे सुन चुके हैं कि होमोसेक्सुअल थी, मर्दों के साथ मर्द बुराई करते थे, अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों को भेजा जिन्होंने उन पे अजाब दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फौरन अपने भतीजे की फिक्र हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचाया और कौम लूत जो है उनको डुबो दिया। तो इसके अंदर भी हमारे लिए अमल की बात क्या है कि हमने ऐसी तमाम फुखर चीजों से हर तरह से खुद को काटना है। बाज़ दफ़ा ऐसी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह इंसान खुद तो उसका शिकार नहीं होता, लेकिन किसी न किसी तरह से उन चीजों के साथ उसको देखना या उसके साथ ताल्लुक जरूर जुड़ता है, ऐसी चीजों से दूर करना है। और दूसरी ये बात है कि एक मुनासिब हद तक, एक मुनासिब उम्र शुरू होने पर अपने बच्चों को इन चीजों से रोकना है, और रोकने के लिए जुबान से नहीं असबाब से। और वो सबब क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारी औलादें 7 साल की हों तो उनको नमाज का हुक्म दो, 10 साल के होने पे सख्ती करो और उनके बिस्तर अलग कर दो। ये हदीस मैं यहाँ इसलिए कोट कर रही हूँ कि जब जवान होते हुए बच्चों को हम एक साथ सुलाते हैं तो बहुत जिस्म के अंदर तब्दीलियों के दिन होते हैं, तो ऐसी चीज़ों से फिर वहाँ पे बहुत ही कबाहत होती है। फिर यहाँ वही कहूँगी कि इस बुराई को ख़त्म करने के लिए बच्चों को अनअटेंडेड छोड़ना, दोस्तों के घरों में रातों को रहना, कज़न्स के साथ सोना, जितनी हद तक मुमकिन हो इससे इज्तनाब की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमें 3 खूबियां पैदा करने में हमारी मदद करे। नंबर 1, हिल, नरम दिली और रुजू इलल्लाह। ये 3 खूबियां थी जो इस रुकू में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाते से थी। और दूसरी ये बात है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के नाते से हमने अपने अंदर से ऐसी तमाम चीज़ों के लिए नफरत पैदा करनी है। अल्लाह ताला हमारे लिए ये सारी बातों को आसान कर दे। रुकू नंबर 8, आयत नंबर 84, सूरत हूद। वइला मदयन अखाहुम शुएबा, और हमने मदियन वालों की तरफ इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। इसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, और तुम नापतोल में कमी भी न करो। मैं तो तुम्हें आसूदा हाल देख रहा हूँ, और मुझे तुम पर घेरने वाले दिन के अजाब का खौफ भी है। ऐ मेरी कौम, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा पूरा करो, और लोगों को इनकी चीज़ें कम करके न दो, और ज़मीन में फसाद और ख़राबी न मचाओ। अल्लाह ताला का हलाल किया हुआ जो बच रहे तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है, अगर तुम ईमान वाले हो। मैं तुम पर कुछ निगेबान और दारोगा नहीं हूँ। उन्होंने जवाब दिया, ए शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादाओं के माबूदों को छोड़ दें और अपने मालों में से जो कुछ चाहें इसका करना भी छोड़ दें? तू तो बड़ा ही बावक्कार और नेक चलन आदमी है। कहा, ए मेरी कौम, देखो तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील लिए हुए हूँ और इसने मुझे अपने पास से बेहतरीन रोजी दे रखी है, मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं कि तुम्हारा खिलाफ करके खुद इस चीज की तरफ झुक जाऊं जिससे तुम्हें रोक रहा हूं। मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर इस्लाह करने का ही है। मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है, इसी पर मेरा भरोसा है और इसी की तरफ मैं रजू करता हूं। वया कौमी ला यजरिमन्नकुम शिकाकी, और ऐ मेरी कौम के लोगो, कहीं ऐसा न हो कि तुमको मेरी मुखालफत इन अजाबों का मुस्तहिक बना दे जो कौम नूह और कौम हूद और कौम सालिह को पहुंचे। और कौम लूत तो तुमसे कुछ भी दूर नहीं। वस्तग़फिरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैह इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद, तुम अपने रब से इस्तिग़फार करो और इसकी तरफ तौबा करो। यकीन मानो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, तेरी अक्सर बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती, और हम तो तुझे अपने अंदर बहुत कमज़ोर पाते हैं। अगर तेरे कबीले का ख्याल ना होता तो हम तो तुझे संसार कर देते, और हम तुझे कोई हैसियत वाली हस्ती नहीं जानते। उन्होंने जवाब दिया, ए मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे नज़दीक मेरे कबीले के लोग अल्लाह से भी ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैं कि तुमने उसे पसे पुश डाल दिया है? यकीनन मेरा रब जो कुछ तुम कर रहे हो वो सबको घेरे हुए है। वया कौमे मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन, اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے دبوچ لیا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہے جیسی دوری ثمود کو ہوئی۔ تو یہ تھا رکوع نمبر 8، اس کا عنوان بھی ہے قوم شعیب گرفتار ہوئی۔ پچھلی قوموں کی طرح وہی انداز سے بالکل حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جو نقطے تھے باقی نبیوں والے، اس کے ساتھ کچھ چیزیں جو اس میں الگ تھی وہ کیا تھی کہ انصاف کے ساتھ پورا پورا تولو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر الزامات رکھے، ایک تانہ جو دیا وہ ان کی نماز کا تھا، اور نماز کا تانہ ہر دور میں ملتا ہے۔ کیا تمہاری نماز یہی کہتی ہے کہ تم ہمارے باپ داداؤں کو برا کہو؟ اور اسی طرح سے پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ ایک اور چیز جو اس رکوع میں ملی وہ کیا تھی؟ برادری کی محبت۔ ہم اگر اس پورے رکوع کو اکٹھا اپنے عمل کے لیے ساتھ دیکھتے جائیں تو پہلی بات تو وہی ہے کہ شرک نہیں کرنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ کر کے دینے میں ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگوں کا حق نہیں مارنا۔ بعض دفعہ ہم مادی چیزوں کے معاملے میں تو بہت حساس ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں نظر نہیں آتی، مثلا محبتیں، جذبات، وقت، ایسی چیزوں کو لوگوں کی جہاں جو بھی چیز ہے اس کے ساتھ اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے ایک چیز جو اس سے سیکھی وہ کیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں نماز کا تانہ دے تو برا نہیں منانا۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ دین پہ نہیں ہوتے نا، جب ان کو کوئی دین والا تنقید کرتا ہے یا ان کو بات کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کے اندر کوئی ایپ ڈھونڈتے ہیں، اور ایک ایپ جو لوگوں کو ہمیشہ دکھتا ہے وہ کیا ہے کہ ویسے تو تم بڑی نمازیں پڑھتے ہو، اللہ کے ساتھ تو تمہارا بہت تعلق ہے، لیکن تمہارا دین یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں سے کٹ کے رہو، تم ان کی خوشیوں میں نہ آؤ، تم خاندان سے کٹ جاؤ۔ تو یہ چیزیں ہر دور میں ہوتی، حالانکہ آپ دیکھیے جو بات کہنے والا کہتا ہے اس کا تعلق کوئی نماز سے نہیں ہوتا، لیکن بس وہی بات ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بات دھر دینا کہ جس کی وجہ سے اس کی بات جو ہے وہ مشکوک ہو جائے اور لوگ اس کی چیزوں کو نہ دیکھ سکیں۔ پھر اس میں ایک چیز جو ہم نے دیکھی اس ناطے سے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم اور اس کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ برادری کی محبت۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہماری برادری سے نہ ہوتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ایسا کرتے۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو ہر دور میں برادری کی بات جو ہے یہ ہمیشہ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لوگ، یعنی جو بہت ساری دور جاہلیت کی چیزیں نہیں چھوڑیں گے، اس میں ذات برادری بھی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں اور بہت کچھ دنیا میں زندگی میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے بعد بھی بعض لوگ برادری کی بنیاد پہ اپنے معاملات کو کسی کو حقیر سمجھتے ہیں جو ان کی برادری سے نہیں، شادی اپنی برادری سے باہر نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کلچرل سملیرٹی کے لیے کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بچے ماحول بچپن سے وہی دیکھتے آئے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس سوچ سے کرنا کہ ہماری برادری سے باہر ہو گیا تو وہ لوگ شاید حقیر ہیں یا وہ ذلیل ہیں یا ان کے اندر کوئی کمزوری ہے، تو یہ چیز بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ دوسری چیز اس ناطے سے یہ کہوں گی کہ بعض دفعہ ہم بہت سارے گناہ صرف اپنی برادری کی آڑ لے کے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری برادری کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کو ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔